काफिया शाह हुसैन, पृष्ठ 100, 72, राग तुखारी। जेती जेती दुनिया राम जी, तेरे कोलों मंग दी रहाओ। कूड़ा देई सोटा देई, कोठी देई भंग दी, साफी देई मिर्चा देई, बेमिड़ती देई रंग दी, पोस्त देई बाटी देई, चाटी देई खंड दी, ज्ञान देई ध्यान देई, महिमा साधो संग दी, शाह हुसैन फकीर साई दा इह दुआए मलंग दी। भंग अर्थात भांग या नशीली बूटी, रंग अर्थात इश्क की मस्ती, महिमा अर्थात गुणगान करना, साधु संग अर्थात फकीरों की संगत, मंगल अर्थात फकीर। व्याख्या, यह दुनिया कई तरह की है और तुझसे अर्थात परमात्मा अपने लिए कई कुछ मांगती रहती है, अर्थात लोगों को दुनिया में जिस चीज की कमी महसूस होती है वह उस सुख को परमात्मा से दुआ मांगते रहते हैं। अपने लिए फकीर इश्क की भांग की मांग करते हैं ताकि वह अपने प्रभु के इश्क में नाम की भांग खाकर मस्त रहे। इस पंक्ति में कुणा और सोटे में भांग की बूटी को कूटकर पीसने की बात कही गई है। इसी प्रकार फकीर इश्क के रंग में रंगने की बात दोहराते हैं जिसमें धोनी रमाने का जिक्र किया है, मगर हुसैन बेहिसाब रंग की बात करते हैं। अगली पंक्ति में भी नशे की बूटी पोस्त की चर्चा की है जिसे चाटी में थोड़ी सी खांड डालकर पीसा जाता है। इन सब नशों को प्रतीक में लेकर हुसैन इश्क की मस्ती की बात करते हैं। काफी की आखिरी पंक्ति में शाह हुसैन स्पष्ट तौर पर कहते हैं, हे प्रभु, मुझे ज्ञान ध्यान के साथ फकीरों की संगति करने और उसका गुणगान करने का वरदान देना। यही एक मलंग यानी फकीर की दुआ है। 73, राग तिलंग। जोबन गया ता धोलिया, रब्बा तेरी मेहर न जावे, आया सांवड़ी मन पर चावण, सैया खेवड़ सांवे। एक रहा हूं मैं भी डूंगी, तुला पुराना मौला पार लंघावे, एक इकना वटिया पूड़िया एक सूत वड़ाए, दो एक कंता बांच विचारिया इकना ढोल कलावे, तीन कहे हुसैन फकीर निमाड़ा ग्यूठे बन दे नी दावे, चार पृष्ठ 101। सांवे अर्थात खुशी से नाचना झूमना, ने अर्थात नदी, तुला अर्थात बेड़ी, आउआ अर्थात परमात्मा, ढोल अर्थात प्रीतम, कलावे अर्थात बाहों में। व्याख्या, जब जवानी चली गई तो इस बात की चेतना आई कि अब बुढ़ापा आने वाला है और फिर कभी भी मौत दस्तक दे सकती है। इस दुनिया से जाने का समय जल्दी ही आ सकता है, इसलिए जरूरी है परमात्मा तेरी कृपा दृष्टि बनी रहे। सावन के आने से मन प्रसन्न हो जाता है। सावन के मौसम में सभी सहेलियां नाचने लगती हैं, अर्थात यहाँ सावन को जवानी के रूप में प्रसृत किया है। सावन का महीना मस्ती और नाच रंग का होता है जो वर्ष में एक ही बार आता है। इस जीवन में जवानी भी सावन के समान एक ही आती है और लोग उसके मस्ती और राग रंग में डूब जाते हैं। उस मस्ती में जीवन के उद्देश्य की ओर ध्यान नहीं जाता। जब जवानी बीत जाती है, मस्ती टूट जाती है, बुढ़ापा नजदीक आने लगता है, तब चेतना जागृत होती है कि परमात्मा को भी याद कर लेना चाहिए। रहाओ, उस जागृत अवस्था में असल सच्चाई का पता चलता है कि इस संसार को पार कर परमात्मा के दरबार में पहुंचने का मार्ग अत्यंत कठिन है। नदी भी बहुत गहरी है और बेड़ी बहुत पुरानी है। इस नदी से सिर्फ परमात्मा ही पार ले जा सकता है। यहाँ नदी से भाव संसार और बेड़ी से भाव धर्मों संप्रदायों की ओर है। सभी से पार परमात्मा ही ले जा सकता है। एक, यह रास्ता इसलिए इतना कठिन लग रहा है क्योंकि कुछ लोगों ने पूड़ी बनाई है, कुछ ने सूत बना लिया है, अर्थात कुछ लोगों पहले ही इस मार्ग को आसानी से पार करने हेतु यहाँ पर अच्छे कर्म किए और किसी किसी ने इससे आगे कदम बढ़ाकर सूत भी काट लिया, अर्थात नाम जाप कर लिया है। दो, अच्छे कर्मों और प्रभु सिमरन से दूर कुछ लोग परेशान होते हैं और कुछ लोग इन कार्यों की वजह से अपने प्रीतम की कृपा दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं। इसी भाव को पति से दूर बेचारी स्त्रियों और पति की गल बहियों में जकड़ी स्त्रियों के रूप में प्रकट किया है। तीन, शाह हुसैन के अनुसार यहाँ पर झूठे दावे नहीं चलते, अर्थात दिखावे की भक्ति या झूठे प्रचार से परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं। चार, पृष्ठ 102, 74, राग जंगला, झूमे झूम खेली मंच वेहड़े, जब दिया नोहर नेड़े, एक रहाओं वेहड़े देविच नदियां वगड़ी, बेड़े लख हजार, केती इस विच डूबदी डिठी, केती लंघी पारी। एक, इस वेहड़े दे नौ दरवाजे दसवें कुफल चढ़ाई, तीस दरवाजे दी महिरमु नाही, जित शहु आवही जाई। दो, वेहड़े देविच आला सोहे, आले देविच ताकी, ताकी देविच सेज बिछावा, आपड़े पिया संगी राती। तीन, इस वेहड़े विच मकना हाथी, संगल नाली खड़े खहेड़े, कहे हुसैन फकीर साईदा, जाग दिया कौन छेड़े। चार, बेहड़े अर्थात आंगन, केती अर्थात कई, कुफल अर्थात ऊंची, महिरमु अर्थात भेद, ताकी अर्थात खिड़की, मकना अर्थात मस्त, जागदिया अर्थात चेतना या जागृति। व्याख्या, इस काफी में शाह हुसैन संसार को आंगन या वेहड़े तुल्य बताते हैं। इस संसार में नाच रंग में खोकर सभी लोग मस्ती में डूबकर खेलने लगते हैं। इस मस्ती में सब कुछ अपना ही प्रतीत होता है, अर्थात इस संसार में जीते हुए मनुष्य इसी को अपने जीवन की हकीकत मान सभी वस्तुओं और रिश्तों पर अपना अधिकार समझने लगता है। एक रहाओ, संसार में मौज मस्ती के साथ साथ प्यार और नाम जाप की नदियां भी बहती हैं, जिसके द्वारा मनुष्य इस संसार से आसानी से पार जा सकता है। परंतु इन नदियों में भांति भांति के बेड़े नजर आते हैं, जिनकी गिनती लाखों हजारों में है, अर्थात कई प्रकार धर्म और संप्रदाय या साधु संत मठ आदि भी इस संसार में मौजूद हैं, जिनके द्वारा इस संसार से पार जाया जा सकता है। कई लोग इस भव सागर में डूबते देखे हैं और कई लोगों की नया पार होते भी देखी है, अर्थात किसी भी धर्म या मत को अपनाया जा सकता है, मगर कुछ लोग आसानी से पार चले जाते हैं और कुछ को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक, इसी संसार में मनुष्य को इंद्रियों के रूप में नौ दरवाजे मिले हुए हैं, जो उसके शारीरिक अंग हैं, अर्थात आंखें, कान, नाक, मुंह और मल सूत्र त्यागने के अंग। इन अंगों के द्वारा वह इस संसार में न सिर्फ जीता है, बल्कि यदि चाहे तो इनके सही प्रयोग से परमात्मा की निकटता भी प्राप्त कर सकता है। अंतर्मन को दसवां द्वार कहा गया, जिसके अंदर जाने का रास्ता बहुत कठिन है, यूं समझिए जैसे अंधेरे। पृष्ठ 103, कोठरी या ताला लगी कोई कोठड़ी, जिसमें प्रवेश पाना इतना सरल नहीं होता। इस दसवें द्वार का भेद जानना सरल नहीं, मगर सच तो यह है कि इस कोठरी में जाए बिना मनुष्य की गति भी संभव नहीं, क्योंकि प्रभु का वास मनुष्य के शरीर में इसी हिस्से में होता है जहाँ जाना अत्यंत जरूरी होता है, परंतु प्रवेश करना इतना आसान नहीं होता। अर्थात मनुष्य को अपने सभी शारीरिक अंगों के साथ साथ अंतर मन को जानना भी अति आवश्यक होता है, क्योंकि इसके बगैर मनुष्य परमात्मा के भेद या रहस्य को जान नहीं सकता। 2. इसी संसार में एक तंग सा रास्ता है जहाँ पर इस अंधेरी कोठरी में जाने के लिए रोशनी की किरण दिखाई देती है। यह रोशनी एक खिड़की द्वारा नजर आती है। इस खिड़की से भाव चेतन अवस्था में से है जिसके सहारे इस रोशनी की प्राप्ति की जा सकती है। इसी अवस्था में अपने प्रीतम से मिलने की तैयारी की जा सकती है। उसके लिए सेज बिछाया जा सकता है अर्थात नाम सिमरन किया जा सकता है। इसी से ही सारी रात अपने प्रीतम के संग गुजारी जा सकती है। उसकी भक्ति और बंदगी में लीन होकर उसके साथ रहा जा सकता है। 3. मगर यहाँ भी तंग और परेशान करने के लिए कई हाथी आ जाते हैं और जो छेड़खानी करते हैं, अर्थात मन की भटकन को मस्त हाथी से तुलना दी गई है। चंचल मन मनुष्य को अपने प्रीतम के चरणों में आसानी से समर्पित नहीं होने देता। इसका इलाज एक ही है, यदि कोई जाग रहा हो तो उसे तंग नहीं किया जा सकता, अर्थात निद्रावस्था या सुप्तावस्था में मन चाहे जैसे मनुष्य को भटका सकता है, परंतु जब मनुष्य की चेतना जागृत होती है वह सोच समझ कर व्यवहार करने योग्य होता है तो उसे इतनी सरलता से अपने मन मुताबिक नहीं चलाया जा सकता। इस पंक्ति में शाह हुसैन मनुष्य को जागृत करने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि कोई भी उस पर हावी न हो सके। 75. राग रामकली। टुक बूझ मन में कौन है, सब देखो आवागौन है। मन और है तन और है, मन का वसीला पौन है। एक रहाओ बंदा बढ़िया जाप को, तू के हाँ लुभाड़ा पाप को, तय सही की किया आपको। एक इक्षा हुसैन फकीर है, तुसी ना आँखों पीर है, जग चलता देखी वहीर है। 2. पृष्ठ 104। टुक अर्थात जरा, वसीला अर्थात आधार, पौण अर्थात प्राण, जाप अर्थात भक्ति, लुभाना अर्थात मोहित होना, पीर अर्थात मुर्शीद, वहीर अर्थात काफिला। व्याख्या, ए मनुष्य थोड़ा सा चेतन हो और फिर विचार कर तेरे मन में क्या है, तेरे अंतर में किसका वास है, तुझे किसकी प्राप्ति की चाह है। वही प्राप्ति ही अंतिम सच्चाई है, बाकी सब तो आवागमन ही है। यहाँ आना जीवन बिताकर यूं ही चला जाना है, क्या तूने आने जाने के लिए ही जन्म लिया है। मनुष्य के शरीर में मन का निवास होता है, परंतु यह दोनों एकदम अलग अलग है। मन की भाषा अभिव्यक्ति और प्राप्ति शरीर से सर्वथा भिन्न होती है। शरीर स्थूल है, मन सूक्ष्म है। मन का आधार यह जीवन और प्राण है। प्राण तो शरीर में भी बसते हैं, परंतु इस प्राण से भाव प्रभु से है, इसलिए शरीर और मन में इतना अंतर होता है। एक रहाओ मनुष्य को इस संसार में भक्ति बंदगी और जाप द्वारा प्रभु की प्राप्ति के मकसद से भेजा गया था, लेकिन हुआ क्या, मनुष्य पाप की दुनिया से इतना आकर्षित हो गया कि उसे अपने जीवन का असल मकसद ही भूल गया और वह दुनियावी चमक दमक में खो गया। मगर इसके बावजूद मनुष्य अपने आप को सही मानता है और खुद को सही साबित करने के अनेक यत्न करता है। एक शाह हुसैन कहता है, उसका फर्ज समझना समझाना है, मनुष्य को जागृत करना है, वह कोई बहुत बड़ा पीर या मुर्शिद नहीं है, न ही उसे बहुत बड़ा पीर माना जाए। वह सिर्फ एक फकीर है जो इस दुनिया के लगातार चलते काफिले और उसकी खायत को देख रहा है। वैसे तो यह दुनिया यूं ही इसी प्रकार चलती रही है, चलती जाएगी, परंतु यदि मनुष्य अपने आने के मकसद की प्राप्ति के लिए कुछ यत्न करेगा तो इसके जीवन के लिए हित में ही होगा। दो